नमस्कार आदाब साथियों, मोबाइल वाणी आपके लिए लेकर आया है गुरु मंत्र कार्यक्रम, जिसमें हम सुनेंगे विभिन्न शिक्षकों द्वारा विद्यार्थियों को दिया गया अलग अलग विषयों पर पढ़ाई के लिए दिशा निर्देश। तो आइए सुनते हैं आज की टिप्स।
मैं उमा सा रामदेव सिंह यादव साइंस कॉलेज व्याख्याता पद पर कार्यरत हूँ। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मनोविज्ञान में शारीरिक विकास है क्या। तो विकास एक शारीरिक पक्ष है, इसके अंतर्गत गर्भावस्था से लेकर परिपक्वता तक का समग्र अध्ययन किया जाता है। हरलोक नामक मनोवैज्ञानिकों के अनुसार विकासात्मक मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जो गर्भाधान से लेकर मृत्यु पर्यंत तक जीवन के विभिन्न कालों में होने वाले परिवर्तनों पर विशेष ध्यान देते हुए मानव विकास का अध्ययन करता है। आज विश्व में मानव विकास के साथ साथ उसके मनोवैज्ञानिक पक्ष का अध्ययन किया जाता है, इसलिए मनोविज्ञान के क्षेत्र में मानव विकास का मनोविज्ञान एक महत्वपूर्ण शाखा के रूप में उभर रहा है। विकास का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष बाल विकास है। हर लोक के अनुसार आधुनिक समय में बाल विकास में मुख्यतः बालक के रूप में व्यवहार रुचियों उद्देश्यों में घटित होने वाले उन विशिष्ट परिवर्तनों की खोज पर ध्यान दिया जाता है। यह व्यक्ति की एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाने का परिवर्तन है। व्यावहारिक दृष्टि से विकास का संप्रत्यय प्राणी की जैविक संरचना और मानसिक प्रक्रियाओं में निरंतर होते रहने वाले सुनिश्चित एवं क्रमिक परिवर्तनों की प्रत्यय का पर्यायवाची समझा जाता है। जहाँ तक मानव विकास के मनोविज्ञान का संबंध है, इसके अंतर्गत मुख्य रूप से पाए जाने वाले शारीरिक मानसिक सामाजिक एवं नैतिक विशेषताओं एवं व्यवहारों की उत्पत्ति और विकास का वैज्ञानिक अध्ययन होता है। गौसिल नामक मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक तरह का परिवर्तन है जिसमें बच्चों की नवीन विशेषताओं एवं क्षमताओं का विकास होता है। स्टार्ट एक मनोवैज्ञानिक है, उन्होंने भी कहा विकास के समय के साथ साथ होने वाला परिवर्तन है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका निरीक्षण प्रतिफलों के अध्ययन के द्वारा किया जाता है। तो विकासात्मक मनोविज्ञान प्राणी के व्यवहार के जैविक कारकों के प्रभावों का अध्ययन करके अनेक विधियों द्वारा करते हैं। शरीर के आंतरिक अंगों में घटित होने वाले परिवर्तन और मांसपेशियों की क्षमता परिपक्वता का ही प्रतिफल है। संरचना परिवर्तन की प्रक्रिया शारीरिक वृद्धि और अवयवों के विभेदन सब कुछ जैविक कारकों पर निर्भर करता है। प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी समाज में जन्म लेता है। समाज द्वारा उस कुछ विकासात्मक कार्य प्रत्येक आयु के लिए निर्धारित की जाती है। प्रत्येक व्यक्ति के सामाजिक होने के साथ साथ उससे सांस्कृतिक मूल्यों मानकों संस्कारों धर्मों रीति रिवाजों को अपनाने की अपेक्षा की जाती है। अतः बालक के विकास के एवं व्यक्तित्व विशेषकों के निर्धारण में उसके सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण की महत्वपूर्ण उपादेयता होती है। अब मैं आपको बताना चाहूंगी कि व्यवहार के शारीरिक आधार क्या है। तो डार्विन नामक एक मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने विकास सिद्धांत के अनुसार बतलाया कि प्रारंभ में छोटे छोटे जीवों की उत्पत्ति हुई थी, लेकिन धीरे धीरे जीवों का विकास होता गया और क्रमशः अधिक विकसित जीवों ने जन्म लेने लगा। इस तरह कीड़े मकोड़े से लेकर तरह तरह के पक्षियों या जानवरों की उत्पत्ति हुई, सबसे अंत में मनुष्य जाति की उत्पत्ति हुई। सृष्टि का सबसे सरल जीव अमीबा एवं कोष होता है। इसके बाद ऐसे जीवों का निर्माण होते गए जिसमें कोषों की संख्या बढ़ती गई। कोषों की संख्या जीव की जटिलता एवं विकास का द्योतक है। सरल तथा प्रारंभिक जीवों के विभिन्न प्रकार के कार्य एक तरह की कोषों के द्वारा होते हैं। ये कोष निम्नलिखित तीन प्रकार के होते हैं, एक ग्राहक कोष होते हैं और एक प्रभावक कोष समायोजक कोष। तो ग्राहक कोष किसे कहते हैं, जिस ग्राहक कोष जिनके सहारे संबंधित किसी उत्तेजना को व्यक्ति ग्रहण करता है, इसे हम ग्राहक कोष कहते हैं, और जिनके सहारे हम तरह तरह के व्यवहार या शारीरिक क्रिया करते हैं उसे प्रभावक कोष कहते हैं। और ग्राहक तथा प्रभावक कोष में संपर्क जोड़ने वाले का काम जिन कोषों के द्वारा होते हैं उसे हम समायोजक कोष कहते हैं। ये हमारा न्यूरॉन का प्रकार होता है। अब है कि न्यूरॉन है क्या। तो न्यूरॉन जीवन की सबसे छोटी इकाई यानी सेल है। मनुष्य के शरीर में असंख्य कोष पाए जाते हैं। शरीर का प्रत्येक अंग कोषों से बना है और अंगों के आधार पर ग्राहक कोष ग्रंथि कोष कर्म कोष और आदि विभिन्न कोषों का उल्लेख कर सकते हैं। इनमें से जो कोष तंत्रिका तंत्र में पाए जाते हैं उसे हम न्यूरॉन कहते हैं। न्यूरॉन जो है इसकी संरचना और कार्य क्या है? तो साधारण कोषों की अपेक्षा न्यूरॉन की बनावट थोड़ी भिन्न होती है, साथ ही न्यूरॉन के विभिन्न प्रकार के होते हैं। बनावट की दृष्टि से इनके तीन प्रकार अंग होते हैं। पहला होता है शाखिका, जिसे इंग्लिश में कहते हैं डेंड्राइट। तो डेंड्राइट्स का क्या काम है? डेंड्राइट्स वृक्ष की टहनियों की तरह होती है, जिनमें कई छोटी छोटी शाखाएं या उपशाखाएं भी होती हैं। यदि ये जरूरी नहीं है पर कुछ स्नायु कोष ऐसे होते हैं जिनमें शाखाएं ठीक सेल बॉडी के चारों तरफ फैली रहती है और इस तरह फैली रहती है कि आने वाले तंत्रिका आवेग को ग्रहण करते हैं और उसे सेल बॉडी में भी भेज देती है। और डेंड्राइट्स का मुख्य कार्य होता है तंत्रिका आवेग को पकड़ना, उसे सेल बॉडी में भेजना होता है। सेकंड है सेल बॉडी। सेल बॉडी के अंतर्गत ही न्यूरॉन का जीव होता है। सेल बॉडी ऊपर से एक झिल्ली से ढका होता है जिसे मेम्ब्रेन्स कहते हैं। इस झिल्ली के अंदर एक प्रकार का तरल पदार्थ होता है जिसे साइटोप्लाज्म कहते हैं। सभी कोष के बीच में एक न्यूक्लियस होता है जो डेंड्राइट्स के द्वारा जब तंत्रिका आवेग शरीर कोष में प्रवेश करता है तो केंद्रक न्यूक्लियस उस तंत्रिका आवेग को सेल से बाहर करता है, अर्थात केंद्रक जो है तंत्रिका आवेग को एक्सोन की ओर जाने देता है। थर्ड है एक्सोन। एक्सोन शरीर कोष के किनारे से निकलता है, यह पतला पर काफी लंबा होता है। प्राय प्रत्येक न्यूरॉन में एक तंतु होता है, इसके अंतिम छोर पर कई छोटे छोटे फाइबर्स होते लगे रहते हैं जिन्हें हम एंडब्रस कहते हैं। एंडब्रस का कार्य होता है तंत्रिका आवेग को सेल बॉडी से निकालकर न्यूरॉन के अंतिम छोर पर पहुंचा देना। इस तरह तंत्रिका नर्वस सिस्टम जो तंत्रिका आवेग एक्सोन के द्वारा ही न्यूरॉन से बाहर निकलता है। तो स्पष्ट है कि डेंड्राइट्स के द्वारा तंत्रिका आवेग इकट्ठा होकर सेल बॉडी के अंदर जाते हैं, न्यूक्लियस उस तंत्रिका आवेग को ग्रहण कर पुनः उसे बाहर होने का निर्देश करते हैं और जब एक्सोन द्वारा न्यूरॉन के छोर पर पहुंच जाता है, इस तरह जो तंत्रिका आवेग डेंड्राइट्स के सहारे न्यूरॉन में प्रवेश करता है वह एक्सोन के सहारे से बाहर निकल जाता है। धन्यवाद
दोस्तों। अगर शिक्षा और परीक्षा की तैयारी से संबंधित आपका कोई भी सवाल हो तो बेझिझक हम तक पहुंचाइए। नंबर 3 दबाकर हम आपके सवालों के जवाब विशेषज्ञों से प्राप्त कर आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद।